रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पार्वती जी को जो संदेह पैदा हुआ था कि इतने बड़े ज्ञानी काकभुसुंड जी को कौवे का शरीर कैसे मिला, वही संदेह गरुड़ जी को हो रहा है। गरुड़ जी ने पूरा रामचरित्र सुना और काकभुसुंड जी के मुख से सत्संग की बातें सुनी, सारा संदेह दूर हो गया और वे स्वयं मान गए कि काकभुसुंड जी आपके समान ज्ञान वैराग्य विज्ञान वाला कोई दूसरा नहीं है, आप रघुनायक भगवान के परम प्रिय दासों में एकतम हो। भगवान शंकर ने भी आपके लिए कहा था कि महाप्रलय में आपका नाश नहीं होता, इसका कारण क्या है महाराज? और ये आपको कौवे का शरीर कैसे मिला? कौवे के शरीर को लेकर के मेरे मन में संदेह है और प्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, इस बात को लेकर मुझे संदेह है। प्रलय में तो महाराज कोई नहीं बचता, सब का नाश हो जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि आपके आश्रम में आते ही स्वाभाविक ही मेरा मुंह कैसे नष्ट हो गया? तो काकभुसुंड जी बड़े प्रसन्न होकर के गरुड़ जी को कहने लगे कि हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि बड़ी धन्य है। देखो काकभुसुंड जी अपनी महिमा नहीं बताते हैं। अपने लोगों को तो कोई पूछेगी जी आपने ऐसा, अरे मालूम है मैंने बहुत कष्ट उठाया है तब जाकर के इतना धन कमाया है, इतना बड़ा व्यापार किया है। हमारे पिताजी के जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत हमने परिश्रम किया है, वो ऐसा किया है वैसा किया है। संसार के किसी भी काम धंधे में चले जाओ, जो आदमी प्रगति करता है उस आदमी के मुख से कभी अपनी कमजोरियों की बातें नहीं निकलती, प्रशंसा की बात निकलती है, मैंने ऐसा किया है मैंने ऐसा किया है। लेकिन हमारे काकभुसुंड जी महाराज बड़ी विचित्र बात बोलते हैं। काकभुसुंड जी अपनी कमजोरियां बताएंगे। काकभुसुंड जी कहने लगे कि सुनो गरुड़ जी महाराज, आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आदमी जब अपनी प्रशंसा ही प्रशंसा सुनता है तो उसको बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि प्रशंसा वास्तव में किसकी होती है? प्रशंसा होती है भगवान की, और व्यक्ति मान लेता है कि प्रशंसा है मेरी, वो मेरी प्रशंसा मान लेता है, बस इसी कारण से मनुष्य का पतन होता है। आज मुझे कई जन्मों की बात याद आ गई, मैं तो पीछे की तरफ झांका ही नहीं, कितने जन्मों की याद आई, क्या क्या मैंने अपराध किए, कैसी कैसी मेरे जीवन में घटनाएं मैंने देखी है मेरे जीवन में, सब कथा तुमको सुनाता हूं। गरुड़ जी महाराज, सबसे पहले तो आपको ये एक सार बात बता देता हूं कि संसार के जितना जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, वैराग्य है, विवेक है, इन सब का फल भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। कई कई जगह पर जाते हैं, जप करने वाले 6-6 घंटा एक आसन पर बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे स्थलों पर गए हैं तांत्रिक लोग, एक जगह पर बैठे हैं तब खूब जप करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? कुछ न कुछ संसार की बात पूरी करनी। उसके लिए कहते हैं कि कितना भी जप हो, तप हो, यज्ञ आदि हो, उसका अंतिम फल, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। बहुत अच्छा मंत्र बोलते हैं, लेकिन यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो वो जप करने का कोई अर्थ नहीं रहा। और जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा तब तक उसको क्षेम भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी। और देखो गरुड़ जी महाराज, जा ये जो ये शरीर है, ये राम जी की भक्ति के कारण से मुझे मिला है, इसलिए मुझे ये शरीर बहुत अच्छा लगता है। स्वार्थी आदमी को जिससे स्वार्थ सधे वही चीज अच्छी लगती है। कभी कभी सज्जन आदमी अपने से नीचे आदमी से भी प्रेम करते हैं, यदि उनसे कुछ अपना स्वार्थ बनता हो तो। जैसे जिसको रेशम का वस्त्र चाहिए वो कीड़ों को पालता है, उन कीड़ों की एक लार निकलती है और उस लार से रेशम बनता है। तो पाट कीट ते हो ते ही ते पाटंबर रुचिर कृमि पालय सब को परम अपावन प्राण समान। तो उस कीड़े से रेशम की डोरी बनती है, फिर उससे कपड़ा बनता है, इसलिए उस कीड़े को पालते हैं, रेशम के कीड़े को, क्यों? अपना मतलब है। बड़ा गंदा होता है रेशम का कीड़ा, परम अपावन, लेकिन प्यार कितना करते हैं उससे, प्राण सम। ऐसे ही ये कौवे का शरीर दिखने में आपको कितना ही खराब दिखे, मुझे भी कितना ही खराब दिखे, परंतु इससे मेरा स्वार्थ सिद्धता है, मैं क्या करूं। ये कौवे का शरीर ही था तब मैं अयोध्या जाकर के भगवान के चरणों में बैठकर ऊंटन खा लेता, उनका स्पर्श प्राप्त कर लेता और उनकी कृपा प्राप्त करता। ये कौवे के शरीर से ही तो किया मैंने। जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? भगवान में प्रेम होना, ये जीवन का स्वार्थ है। शरीर कौन सा अच्छा है? जिस शरीर से भगवान का भजन होता हो। यदि भगवान से विमुख होने पर हमको ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए, ब्रह्मा जी का शरीर भी मिल जाए, तो कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने उस शरीर की प्रशंसा नहीं कही है। भगवान की भक्ति मैंने इस शरीर से प्राप्त की है, इसलिए सबसे बड़ी तो भगवान ने मुझे एक वरदान की शक्ति दी कि जाओ काकभूषण जी, तुम मर जाए तभी मरोगे, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम नहीं मरोगे। तो मैं कभी भी इस शरीर से मर करके नया शरीर लेना ही नहीं चाहता हूं। क्यों मरूं मैं? भक्ति इसी शरीर से होती है, दर्शन इस शरीर से होते हैं, मैं इस शरीर को क्यों छोड़ूं? पहले मैंने बहुत बार अपने शरीरों को प्राप्त किया और उनका बिगाड़ किया, क्योंकि मैं राम जी से विमुख रहा। नाना जन्मों में मैं गया, नाना प्रकार के मैंने कर्म किए, मैंने भी जप तप यज्ञ दान पुण्य बहुत किए, परंतु इन सब को किया भगवान से विमुख होकर के। जिस जिस योनि में गया उस योनि में भटकता रहा, दुख पाता रहा। जैसे आज मैं आनंद में डूबा हूं ना गरुड़ जी, ऐसे मैं सुखी कभी नहीं हुआ। तो भगवान शंकर की कृपा है, मुझे पिछले सब जन्मों की याद आती है। जैसे एक मनुष्य, साधारण मनुष्य अपने जीवन के क्षणों को याद करता है, उसको कुछ बातें याद रहती है, ऐसे मुझे पिछले जन्मों की बातें याद है। मैं आपको वो जन्म की बातें बताता हूं, मेरे जन्म में क्या क्या हुआ पिछले जन्मों में। तो देखो गरुड़ जी महाराज, एक बार पिछले कल्प में कलयुग का समय था। कलयुग को तो आप जानते ही हो गरुड़ जी, सब अवगुणों का भंडार है। पुरुष को देखो चाहे स्त्री को देखो, सब कल्पित आचारों में डूबे रहते हैं, मर्जी आए जैसी करते हैं। उस कलयुग के अंदर मैंने अयोध्या में जन्म लिया और वहां भी एक शूद्र के घर में मैंने जन्म लिया। अयोध्या में रहता था लेकिन मैं शिवजी की सेवा करता था, विष्णु राम जी की सेवा नहीं करता। ऐसी जच गई, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, ऐसी जच गई। ऐसे शिव सेवक मन क्रम अरुबानी और आन देव निंदक, कोई राम जी की एक और की बढ़ाई गई, न क्या राम जी है तुम्हारे, वनवास में फिरते रहे, नारी के विरह में रोते रहे, क्या है तुम्हारे कृष्ण, क्या है तुम्हारे, कोई भी किसी के लिए भी कोई बात उठाओ पटाक से हम निंदा कर लेते थे। उस जन्म में हमारे पास कुछ पैसा भी था तो धन का हमारे पर मद छाया हुआ, बोलता खूब था, बुद्धि भी हमारी बड़ी तेज थी, इसलिए हम दंभ की बातें भी करते थे, अंदर से तो और दिखाते अपने को कुछ और। देखो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, अब देखो अपने अवगुण बता रहे हैं बेचारे काकभूषण जी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई। देखो अयोध्या नगरी जो राम जी की राजधानी है, उसमें मैं रह करके न तो मैंने राम जी की महिमा जानी, न मैंने अयोध्या की महिमा जानी, उल्टे मैंने कोई खास अयोध्या का प्रभाव अपने में नहीं देखा। जिस अयोध्या का प्रभाव कितने कितने शास्त्र गागा करके कहते हैं कि साहब पूरी महिमा तो हम भी नहीं लिख सकते। आज तो मैं अब अयोध्या का प्रभाव खूब जानता हूं, जब से मैं भगवान राम के परायण हुआ हूं तब से जानता हूं। मैं बात उस समय की करता हूं, तो वो उस कलयुग की बात करता हूं जिसमें मैंने जन्म लिया। आप जानते हैं ना काकभूषण जी, ये कह रहे हैं कि गरुड़ जी आप जानते हैं ना कि इस कलयुग के अंदर जितने धर्म के ग्रंथ हैं सब लुप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति दंभ पूर्वक अपनी मति के अनुसार जो बातें बोल देता है, हां साहब ये हम तो इस पंथ को मानेंगे, दंभिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ। दंभ पूर्वक जो बात कहेगा उस बात को सब मानेंगे। कलयुग के अंदर लोग लोभ और मोह के बस में पड़े हुए होकर शुभ कर्म को छोड़ देते हैं। कोई भी क्यों न हो उसका पीढ़ियों से चला हुआ कर्म है, उसमें उसकी अरुचि हो जाती है। गरुड़ जी आप भगवान के वाहक हो, ज्ञान निधि हो, फिर भी मैं आपके सामने कुछ कलयुग की बातें बताता हूं कि कलयुग में क्या क्या होता है। देखो गरुड़ जी, कलयुग के समय आप तो यहां पृथ्वी पर आते नहीं हो, आप तो भगवान के पास रहते हो, और आपको कलयुग के विषय में इतना ज्ञान नहीं जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं तो कलयुग के अंदर खूब जो है दुख पाया हुआ हूं, खूब देखा हुआ हूं। कलयुग के अंदर सबसे पहले एक बात कही जाती, कौन होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रिय, जात पात सब तुमने बनाई, सब बिल्कुल बेकार है। एक जैसा खून है क्या? ब्राह्मण का अलग खून होता है, कोई शूद्र का अलग खून होता है? खून एक है, वायु एक, पवन एक, सब एक। सो फिर ये वर्ण धर्म, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्यों है? और गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चार आश्रम, क्या जरूरत है इनकी? इनकी कोई जरूरत नहीं है, सब मनुष्य एक है। तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी के साहब, वेदों में तो ऐसी व्यवस्था बताई। नहीं नहीं नहीं, वेद वेद कुछ नहीं है। उस समय राजा लोगों ने पंडितों से, ब्राह्मणों से कुछ लिखा दिया, भोजन करा दिया, दे दिया, दो टुकड़ा दे दिया और अपने मर्जी जैसा लिखा दिया, कुछ नहीं। अरे मनु महाराज, अरे मनु तो खुद राजा ही तो था, और कौन था? कहते हैं भाई ये बात नहीं है, ये तो शुरू से परंपरा चली आ रही है। परंपरा परंपरा अपने डाली, परंपरा होगी, अब हम नहीं मानते तो अपनी भी परंपरा चल पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग वहां पर कलयुग में बढ़ेंगे। मार्ग सोई जो कहू जोई भावा, जिसको जो अच्छा लगे वही मार्ग अपना लेंगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो सबकी बातों को काटता फिरे, खूब बकबक करता रहे, साहब ये बड़े भारी पंडित हैं। एक जगह एक कथा हो रही थी तो किसी ने कहा कि साहब कथा तो बहुत अच्छी हो रही, बहुत अच्छे आए कोई। तो किसी ने पूछ लिया कि क्या बात है, विशेष बात क्या बताई? कि विशेष बात क्या बताई ये तो पता नहीं है। तो वो बोल रहे थे, रुकते ही नहीं थे, इसलिए हमने कहा बहुत अच्छा बोलते हैं। ये बोलते बोले रुकते ही नहीं, बोलते रहते हैं। काशी के एक पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो आजकल तो जो है ना ऐसे कोई खास शास्त्र की बातें नहीं चलती है, शास्त्रार्थ होता है तो शब्दों को ऐसे बोलना चाहिए कि थूक उछलने लग जाए, तो अपना भी अगला आदमी चुप हो जाएगा। हाँ साहब हम जीत गए, शास्त्रार्थ में हम जीत गए। पंडित से जो गाल बजावा, और जो जितना मिथ्यारंभ करेगा, आडंबर रचेगा कि ये संत है साहब, कोई पुस्तक नहीं इनके पास, कोई रामायण नहीं, कोई भागवत नहीं, कोई गीता नहीं, कुछ नहीं, बस वो कहते हैं सब कुछ नहीं, शास्त्र तो अपने अंदर से पैदा होता है। शुरू शुरू में शास्त्र किसी ने भी बनाया होगा, उसके अंदर से ही तो आया होगा। ये वेद भी तो किसी के अंदर से उपज हुई होगी, वो तो हमारे अंदर है, अंदर से पैदा होते हैं। अब क्या बताया उनको? सयाना बुद्धिमान आदमी वही है जो दूसरे का धन कैसे हर लेता है, वो चलता फिरता पुर्जा मारे रे, कैसा देखो कैसे पैसा ले लिया इसने। संत वो है कि जो बाहर से खूब दंभ दिखाता है, और जो खूब मस्करियों की बातें करता है, खूब चतुराई से झूठ बोलता है, सत्य का नाम ले लेकर के झूठ बोलता है, वो गुणवान है कलयुग। बड़ा वाह 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 वा, वा। वेद मार्ग का त्याग करने वाला ज्ञानी वैरागी कहना वाक्य कहा जाता है। खूब जटा बढ़ा ली, नाखून वगैरह बढ़ा लिए, बस कलिकाल में तपस्वी है साहब। देखो कैसे तपस्वी है, जटा बढ़ी हुई, इनको न जटाओं से मुंह है, नाखून बढ़ गए, न नाखूनों से मुंह है। अशुभ वेश भूषण धरे, अशुभ वेश ही इनका भूषण हो गया, और अब भच्छा भच्छजे खाए, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार ही नहीं करते हैं। ऐसे ही लोग कलयुग के अंदर सिद्ध माने जाते हैं। और जो अपकार का आचरण करते हैं, जे अपकारी चार, चार माने आचरण, जो अपकारी का आचरण करते हैं उनको लोग बहुत आदर देते हैं। मन क्रम वचन लबार, और जो मन से वचन से वाणी से बक 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 हरदम मतलब निरर्थक बातें करते रहते हैं, तेई वक्ता कलिकाल महु, वे कलियुग के अंदर बड़े भारी वक्ता हैं साहब। गृहस्थ में चले जाओ तो हर घर में चले जाओ, नारी विवेश नर सकल घुसाई, जितने मनुष्य हैं, अरे स्त्री घर में आती है पति के अधीन रहने के लिए, पर सब लुगाइयों के अधीन ही अधीन है। जैसे लुगाई नचाती है ऐसे पुरुष नाचते रहते हैं, नाचई नट मरकट की नाही, जैसे कोई बंदर को नचाए मदारी नचाए, ऐसे लुगाइयों के सामने मदारी बने हुए बंदर बने हुए रहते हैं। और शूद्र है वो, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, शूद्र लोग उपदेश देने लग गए, अपने गले में जनेऊ डाल लिया और उपदेश देते हैं। शास्त्र का संत महात्माओं का विरोधी होकर अपने काम क्रोध लोभ के अंदर डूबे रहना, ये आजकल लोगों का खास काम हो गया। स्त्रियां हैं वो अपने गुणवान पति का त्याग करती हैं और दूसरे पुरुषों से प्रेम करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जो बिचारी सौभागिनियां स्त्री होती हैं उनके तो पूरे आभूषण नहीं, और विधवन के श्रृंगार नवीना, विधवा नए नए प्रकार के श्रृंगार करती है। विधवाओं को देखकर कोई कह नहीं सकता कि विधवा है क्या, ऐसे कलयुग में स्त्रियों की बात है। और गुरु चेला की बात सुनो, गुरु सिख अबधिर अंध का लेखा, गुरु तो है अंधा, वो तो गुरु तो बन गया लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, और चेला है वो बहरा बना हुआ है, वो सुनता नहीं गुरु जी की। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। और जब पैसा लेने की बात आए तो हराई शिष्य धन, वही तो भेंट धर दे यहां, शोकन हराई, उसकी शोक चिंता तो दूर करते नहीं। ऐसे जो अपने को गुरु बनाए फिरते हैं, जो लोगों से धन इकट्ठा करते हैं, शिष्यों से धन इकट्ठा करते हैं और इनका शोक दूर नहीं करते, सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी, ऐसे वे गुरु बने हुए लोग घोर नरक में जाएंगे। दस दस हजार व्यक्तियों को खड़ा कर देखो साहब, आज गुरु दीक्षा है साहब, दस दस हजार को गुरु दीक्षा दी जा रही है, ऐसे कोई गुरु दीक्षा होती है? है साहब, कलयुग है, सो गुरु घोर नरक में ही पड़े। माँ बाप का बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम होता है, पर माता पिता भी बच्चे को नहीं पढ़ता है, बच्चे तू पढ़ता नहीं है बेटा, नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, फिर कैसे काम चलेगा। उधर भराई सोई धर्म सिखा भाई, केवल पेट भराई की बात करते हैं। शिक्षा होती है सा विद्या या विमुक्त है, मुक्ति के लिए विद्या होती है, विद्या अध्ययन मुक्ति के लिए होता है, लेकिन कहते हैं वह पेट भराई हो, जिस विद्या से हम पैसा संग्रह कर ले वही धर्म सिखाना चाहते हैं। और लोगों के अंदर देखो, चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई बोलता ही नहीं है, सब राम जी की माया है साहब। साहब अमुक आदमी मर गया, अच्छा मर गया, गया वो तो राम जी की माया है साहब, गलनीरी माटी रहा मर गया बेचारा। दूसरों को उपदेश देने में यही कहेंगे, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कोड़ी लागी लोभ वश, और अपने को कहीं लोभ के कारण से कोड़ी दो कोड़ी का लाभ भी होता हो तो उस समय में अपना चाहे गुरु हो और चाहे ब्राह्मण हो उसका घात करने में संकोच नहीं करते, बस पैसा मिलता है उनको। अरे तुम तो ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, सब राम जी की माया बोलते थे, क्या हुआ? मौके पड़ने पर सब ज्ञान धूमिल हो जाता है। शूद्र लोग हैं वो ब्राह्मणों से बोलते हैं, ए ब्राह्मणों हम तुमसे कोई घाट में हैं क्या, हम तुमसे कोई छोटे हैं क्या, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम भी भगवान को जानते हैं, तत्व को हम भी जानते हैं। जान ही ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखा वही डांट, आंख दिखा दिखा के डांटते हैं उसको। इधर पुरुषों का चरित्र भी मैंने देखा, हे गरुड़ जी महाराज इस कलयुग में बड़ा विचित्र, अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करते और दूसरी स्त्री से गुपचुप गुपचुप प्रेम करते रहते हैं, घर का घर खराब कर देते हैं, अपनी स्त्री को रोटी देने में भी दुख होता है और अपने कोई जो है प्रेमिका होती है उसको पूरा घर बर्बाद करवा देते हैं। ऐसे ऐसे कलयुग में मनुष्यों के चरित्र हम देखे, आप गए और तीन हो घाली, खुद भी मरते हैं दूसरों को भी डुबा देते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कल्प कल्प भरी एक एक नरक का, जितने नरक है एक एक नरक में कल्प कल्प पर पड़े रहते हैं। नरक कई है, भागवत में 28 मुख्य नरक बताए, 28 एक नरक में एक कल्प जितना समय है। कल्प माने पूरा ये एक सृष्टि जब चलती है, एक एक ब्रह्मा जो होता है उसका एक कल्प होता है। एक ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की होती है, नरक में पड़ा है, एक नरक में फिर दूसरे नरक में, ऐसे लंबे समय तक नरक में पड़े रहते हैं। साधु संतों को देख लो, जो नीचे से नीचे वर्ण में रहते हैं, जो स्वपच है, स्वपच का अर्थ होता है बहुत खराब अर्थ है, अब क्या बताएं सभा में, कुत्ते का मांस खाने वाला, स्वयं माने कुत्ता उसका मांस खाने वाला, कोई चंडाल लोग ही होते हैं, पतित लोग होते हैं, इनसे नीचा कोई नहीं होता। वे किरात कोल और कलवार बहुत नीचे जाती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले तो घर गृहस्थ बसाते हैं, लुगाई मर गई, धन संपत्ति लोगों ने ले ली, चलो नाई को बुलाया, मुंड मुंडा लिया, कपड़े अपड़े पहने, साफ हो मुंड मुंडाए हो, हम तो साफ साधु है, ऐसे अपने को साधु रूप से जनता में उपस्थित करते हैं, ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाते हैं। ऐसे करके वे लोग अपने इस लोक को और परलोक को दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं साहब हम सबसे ऊंचे, वे ब्राह्मण अब निरक्षर होने लगे। ब्राह्मण आप ब्राह्मण हो क्या, हाँ ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मण हो कि अमुक ब्राह्मण है, गोत्र वगैरह बता देंगे। अच्छा साहब आप त्रिवेदी हो तो एक ऋग्वेद का मंत्र तो बोलिए, ये हमने पढ़ाई की नहीं। ब्राह्मण लोग अब आजकल निरक्षर हो गए, ब्राह्मण लोग बीड़ी सिगरेट आराम से पीने लग गए। अरे आप ब्राह्मण हो बीड़ी सिगरेट पीते हो, बनारस में जनेऊ पहरे हुए सज्जन को मांस की दुकान पर मांस लेते हुए देखा गया, जनेऊ पहरे हुए विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हो गए आचार विचार से हीन। शूद्र है वो जप तप करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठ करके लोगों को पुराण आदि की कथा सुनाते हैं, सब लोगों के अंदर ये कल्पित आचार हो गया, हो जाता है कलयुग में, सब लोग वर्ण संकर हो रहे हैं, मर्यादा का उच्छेदन कर रहे हैं। गरुड़ जी महाराज बहुत पाप करते हैं तो उसका दुख भी भोगते रहते हैं, फिर रोते रहते हैं ये देखो ये हो गया ये हो गया। महाराज जी ने तो कई बार कहा कि हम महाराष्ट्र में गए थे तो एक माई आई और उस माई ने कहा कि महाराज हमारे दो लड़का थे, एक लड़का मर गया, हमको बड़ा दुख हुआ, अभी एक लड़का बचा है, इसको आशीर्वाद दे, ये मरे नहीं। महाराज जी ने कहा दो लड़के क्यों हुए भाई, हमने ऑपरेशन करा लिया। तो भाई ऑपरेशन करा लिया तो दुख तो आपने पैदा किया है, वो मेरे आशीर्वाद से थोड़ी कोई रुकेगा। तो करही पाप पावही दुख, खुद पाप करते हैं उसके फल से उनको दुख मिलता है, वो दुख तो भाई कोई किसी प्रकार से छुड़ा ही नहीं सकता। कलयुग में यही दुखों का हेतु है। जो सन्मार्ग है शास्त्र में जो कहा है, जो भक्ति का मार्ग है, विवेकी पुरुषों ने जो बात कही है, वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती। तेन चले नर मुह बस कल्पई पंथ अनेक, अनेक अनेक पंथ चला लेते हैं। कहा कि देखो बहुधाम समारई धाम जति, जति माने सन्यासी साधु। साधुओं की जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि बेचारे संसार के लोग साधुओं को देख करके मन में सोचें कि देखो इनके पास कुछ नहीं, यही बेचारे अपना काम चलाते हैं, इनको भी भगवान देखो रोटी कपड़ा देते हैं, हम क्यों चिंता करें। साधु तो समाज में भगवान का विश्वास बढ़ाने के लिए था, लेकिन साधुओं ने क्या किया, बहुदाम समारई धाम, अपना जो मकान आश्रम है उसको खूब समार संवार करके रखने लग गए। साधुओं के अंदर वैराग्य नाम की चीज ही खत्म हो गई। तपस्वी लोग तो बड़े धनवंत हो गए, और गृहस्थी लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े के लिए तरसने लग गए। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा मैंने देखा है। जो अच्छी सुशील आचरण वाली है, कभी सास ससुर के सामने बोलती नहीं है, घर का सब काम करती है, कुलवंती स्त्री है, उसको तो घर से निकाल देते हैं। और गृह आनई चेरी नबेरी गति, और न जाने कैसी कैसी स्त्री को लाकर घर में रख लेते हैं। चेरी माने दासी, दासी का अर्थ ये हुआ कि घर में कोई नौकरानी रहती है, वो नौकरानी तो नौकरानी के हिसाब से आती है, पर वो धीरे धीरे वहां की मालकन बन जाती है। इधर पुरुषों की दशा फिर बता रहे हैं कि जब वो बेटा है ना, वो माँ बाप का तभी तक प्रेम करता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, अपनी स्त्री का मुख नहीं देख लेता तब तक माँ बाप उसको अच्छे लगते हैं, अपनी स्त्री का मुख देखने के बाद माता पिता उसको बहुत खारे लगने लगते हैं। ससुरारी प्यारी, उसको अपना ससुराल प्यारा लगता है, अपने भाई खारे लगते हैं, अपने लुगाई के भाई बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमारे साड़ा साहब हैं साहब, ये हमारे ससुर जी हैं, ये हमारी बहुत मदद किए हैं, माँ बाप की तो बात ही छोड़ दो। जब से ससुराल प्यारा लगने लगा तब से शत्रु के रूप में सारा कुटुंब दिखाई देने लगा। ऐसे ऐसे कलयुग के अंदर आचरण होते हैं। राजा है जिनके हाथ में सत्ता है, वो कहते हैं धर्मरम कुछ नहीं। क्या होता है धर्म? हमारा तो शासन धर्म निरपेक्ष है साहब, धर्म निरपेक्ष। ये धर्म की बातें करने वालों ने तो हमारे देश को खराब कर दिया, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। निरप पाप परायण धर्म नहीं, करिदंड विडम्ब प्रजा नित ही, और प्रजा के ऊपर नए नए विचित्र विचित्र दंड थोप देते हैं। ऐसा तुमने क्या दंड उनके ऊपर डाल देते हैं, और क्या बताए, जिनके पास पैसा बहुत है चाहे वो कितने ही मलिन काम करते हो, पैसा उनके पास बहुत है तो वो कुलवान कहलाते हैं। बंबई में सुना कि सूरों को यूं लटका करके नीचे आग पैदा करते हैं, उसे सूर के जो है बहुत पीड़ा होती है, फिर उसमें से चर्बी निकलती है, उसकी चर्बी के डब्बे बना बना करके व्यापार करते हैं, विदेशों में जाते हैं वो चर्बी से भरे हुए, सूर की चर्बी से, अनाप शनाप उनके पास पैसा, कितना पैसा कोई कह नहीं सकता, इतना पैसा। अब बड़ी समाज में इज्जत का ऐसा भी अरबपति खरबपति ऐसा। काम क्या है इनका? काम है सूर की चर्बी का, ये विदेश में काम है सर। तो धनवंत कुलीन, वे धनी आदमी कुलीन है, मलिन अभी, चाहे वो मलिन काम करो, पैसा ज्यादा हो गया तो बस वो कुलवान हो गया। द्विज चिन्ह जनेऊ, और ब्राह्मणों के पास में जनेऊ ही चिन्ह है बस, कोई संध्या वंदन कुछ नहीं है। और उघार तपी, तपस्वी बोए तो उगाड़ रहे उखर, बस गोडे तक थोड़ा लपेट लिया, ऊपर से खुला रहे साहब। ये बड़े अच्छे संत है, कुछ पहनते ही नहीं, उघार तपी। और वेद पुराण की बातों को नहीं माने वो संत हरि सेवक। कवि वृंद उदार गुनी न सुन, कवि वृंद उदार दुनी न सुनी। कवि समुदाय तो बहुत मिल जाएगा, पढ़े लिखे तो लोग बहुत मिल जाएंगे, पर दान देने वाले, उदारता पूर्वक दान देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कलयुग के अंदर बार बार अकाल पड़ता है, लोग अन्न के दाने दाने के लिए दुखी हुए मारे मारे फिरते रहते हैं। लोग काम क्रोध और लोभ इन तीनों के तीनों से बाहर कुछ दृष्टि रखते ही नहीं है। उनको स्त्री सुख से ऊंचा कोई सुख नहीं दिखता, और अपने पास मान के ज्यादा उनको कोई लाभ नहीं दिखता। मान हो गया बस, अब हो गया जीवन पूरा हमारा, खूब आनंद, इतना सम्मान हो गया, लोग हमको जानने लग गए, इतना बड़ा पद मिल गया, लोग जान गए, बस हमको मिलने वाली चीज मिल गई। तो स्त्री सुख से बढ़कर सुख नहीं, मान प्राप्ति से बढ़कर उनके पास कोई प्राप्ति नहीं, और क्रोध के समान उनका कोई अधिकार नहीं। क्रोध किया हमने बस, इसी के अंदर व्यापी रहे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के अंदर वे कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त ही ग्रस्त लोग दिखाई देते हैं। स्त्रियों का आभूषण केवल केश ही रह जाएगा। सेठ जी कहा करते थे कि स्त्रियों का केश क्या आभूषण होगा, कि हमारे समझ में नहीं आई थी उस जमाने में कि स्त्रियों का कच्छ भूषण, ये बाड़ों से क्या करेंगे, बाड़ों का क्या आभूषण बनाएंगे, बाड़ों की कोई ये चूड़ियां बनाएंगे कि गजरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाड़ों का। बाद में पता चला कि केशों की जो विचित्र विचित्र ढंग की कटिंग है ना, बस ये सुंदर लगेंगे, विचित्र ढंग की कटिंग। अबला कच्छ भूषण और भूरी छुदा, स्त्रियों की कभी ये चीज लाओ और वो चीज लाओ, घर में कभी इच्छा पूरी होती नहीं। धनहीन दुखी ममता बहुधा, कितना ही धन मिल जाए फिर भी अपने को वे धनहीन मानती है, ममता बहुत होती है, ममता। उनकी बुद्धि बड़ी कठोर होती है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के बिना वे कहीं नरम होने वाली नहीं होती। मति थोड़ी, बुद्धि थोड़ी पर कठोरी, न कोमलता, ये हमने स्त्रियों का रूप देखा। और मनुष्यों का नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, मनुष्य हरदम रोगग्रस्त मिलते हैं। अभिमान विरोध अकारण ही, खूब अभिमान हमारा, हम हर, अब क्या बताएं, किसी चीज का अभिमान कर लें, किसी चीज का अभिमान कर लेते हैं, बिना कारण लोगों से बैर विरोध कर लेते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि अरे हमारा बहुत छोटा सा जीवन है, अब 5 वर्ष जिएंगे कि 10 वर्ष जिएंगे कि कितना जिएंगे कुछ पता नहीं है, इतने गुमान में रहते हैं, घमंड में। कल्पांतन नाश गुमान असा, हमारा जैसे कोई लंबे समय तक नाश हो ही होगा ही नहीं, ऐसी दुर्दशा हो गई। मनुष्यों में इतना लोभ छा जाता है कलयुग के अंदर। हे गरुड़ जी महाराज, बेटी का पैसा लोग खा जाए, नहीं माने तो कौ अनुजा तनुजा, बेटी का पैसा है, बहन का पैसा है, वो पैसा खा जाए, खा जाते हैं। नहीं तो उस विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, सब जातियों में मंगतापन आ गया, बस मैं खा लू, मैं ले लू, ये मंगतापन सब में आ गया। दान दया का तो नाम ही नहीं है, सब अपने शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। तनु पोषक नारी नरा सगरे, मारवाड़ी सब दे दिया, सगड़ा ही लागी उड़ाए। तन न पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मुंह बगरे। दूसरे की निंदा करने में जाओ, खूब मिल जाएगा। अब वो ऐसा है, अच्छा वो ऐसा है ना, मैं पहले ही जानता हूं, मैं तुम्हारा मुंडा हूं, क्यों गो नहीं, वो आपा ने का ही मतलब, और आप क्यों निंदा करा, क्यों आपा अपना मुंडो खराब करा, है तो वो आए लखना रहो, और मारे कहने से कहीं फायदा। निंदा करते भी जाते हैं, फैली निंदा, पर निंदक जे जो दूसरों निंदा करते हैं वो जगमो बगरे, जग में खूब फैले हुए, खूब आनंद से निधड़क होकर के निंदा करते हैं। इसलिए गरुड़ जी महाराज, सब अवगुणों का घर है कलयुग। पर एक बात है, इस कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा लाभ भी हमने देखा है गरुड़ जी महाराज, जो लाभ सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं, वो एक लाभ भी बहुत है। सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर तो बहुत बड़े बड़े पूजा करो, यज्ञ करो, योग करो, तब जाकर के लाभ होता था। पर कलयुग के अंदर तो केवल भगवान का नाम स्मरण करो, इतने मात्र से कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल हरिगुण गा, भगवान का गुणगान गाते रहो और वे भवसागर का था पा जाते हैं। गरुड़ जी महाराज, भगवान का भरोसा रख करके, सबका त्याग करके भगवान का भरोसा करते हैं, उस ऐसा कलयुग के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इतना सब कहते कहते एक बात ऐसी कह देते हैं जिस पर लोग संदेह करते हैं, ये बात क्यों कही, ये क्या, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग की एक विशेष बात और बताए गरुड़ जी कि मानसिक पुण्य तो होता है पर मानसिक पाप नहीं होता। कहते ये क्या बात है, मानसिक पुण्य क्या और पाप क्या। जैसे किसी आदमी के ये मन में आए कि भाई क्या करें, हमारे पास तो धन नहीं है, नहीं तो भाई हम हजार गायों का पालन करते हैं, गायें बेचारी बड़ी दुखी है, बड़े ऐसा है, हजार गाय पाल, पर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना शुभ संकल्प हृदय से उठे, हृदय से ये संकल्प हो तो उसको हजार गाय पालने का पुण्य मिल जाता है। और किसी का अनिष्ट सोचा कि उसका अनिष्ट हो जाए, अनिष्ट किया नहीं है, ऐसे हजार गाय उसने पाली नहीं है, लेकिन हजार गाय पालने की भावना पैदा हो गई तो उसको हजार गाय की रक्षा का पुण्य तो मिलेगा। लेकिन मानसिक रूप से यदि पाप किया कि इनका नुकसान हो जाए तो उससे क्या होगा, वो अपने को नुकसान नहीं होगा, पाप नहीं लेगा। पाप की बात तो है क्योंकि कलयुग में छूट है। पाप को जब तक वो व्यक्ति आचरण में नहीं लाता है, आप सत्संग में बैठे हुए हैं, आपकी जेब में 500 का नोट पड़ा है, मैंने देखा धीरे से, नहीं 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 अपने को नहीं लेना है भाई, बेचारे सत्संग में आए हैं, हम भी सत्संग सुनते हैं, अब मेरी रुपया लेने की इच्छा तो हो गई, हाथ तो बढ़ा दिया, फिर मैंने रुक गया, तो मेरे को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि मैंने वो पाप किया नहीं है, इसलिए वो मानसिक पाप नहीं लगता। और मानसिक यदि पुण्य यदि आप सोचेंगे कोई अच्छे से अच्छी पुण्य की बात, उसका फल मिल जाएगा, ये एक विशेष लाभ है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग पर विश्वास नहीं है लोगों का, भगवान का नाम भी लेते हैं पर विश्वास नहीं हुई कहीं करा और तो मैं कहीं जाना को नहीं, मैं कहीं पटोड़ी भी को नहीं और मैं कहीं समझोड़ी भी को नहीं, कोरो बैठी बैठी राम राम करा और कहीं करा बताओ। अरे कोरी राम राम है माता जी, इस बढ़कर तो कोई साधन ही को नहीं कल्याण करने रहो, पर विश्वास नहीं है। विश्वास कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण घन विमला भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के व्यक्ति तर जाता है। कलयुग के अंदर दान का भी बड़ा भारी महत्व होता है। देखो दान के विषय में लोग ये समझते हैं कि भाई हम इस पात्र को देंगे क्या पता ये करेगा, कि ऐसा नहीं करना, ज्यादा पात्र पात्र नहीं देखना चाहिए। दान के अंदर भी बताया निर्वाह की वस्तु दे, रोटी दे दी और कुछ वस्तु दे दी, किसी को कुछ कपड़ा दे दिया। कई कई क्या करते हैं कि जो चीज अपने काम नहीं आती है ना वो दान में देते हैं, साहब कपड़ा पुराना हो गया दान में दे दिया, हमको दान का फल नहीं मिलेगा, तो हमारे काम नहीं आता है, हमने किसी को दे दिया उसके बेचारे काम आए, गरीब आदमी है, दान क्या हो गया वो कपड़ा। दान देखो दान उसी का ही फल देने वाला होता है, जो वस्तु हमारे काम आने वाली हो और हमारी आवश्यकता में हमने कटौती की हो और वो कटौती करके वो चीज हम दान में देते हैं, वो दान होता है। तो हमारे कपड़े साहब हमारे तो काम आते नहीं, हम क्या करें, तो उन कपड़ों को समेट करके ऐसी जगह पर रख दो जहां सबकी नजर पड़े और उठा के ले जाए, घर के बाहर रख दी, अब जिसकी मर्जी आए जो ले जाए, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमारे काम नहीं आ रही या पुरानी हो गई साहब ये टोपी पुरानी हो गई, अरे तन दान में देऊंगा, मन दान में देने को अधिकार नहीं है, क्योंकि मारे काम नहीं आई जना मैं आज चीज देऊं तो दान थोड़ी हो, मारी आवश्यकता में कमी आवे जना देऊं जना हुए दान। तो जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण, दान ऐसे होता है। तो उस कलयुग के अंदर हे गरुड़ जी महाराज, मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बात और कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, चारों ये वर्ण, इसमें ब्राह्मण में सत्वगुण ज्यादा होता है, रजोगुण गौण होता है। क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान होता है, सत्वगुण गौण होता है, और वैश्य में तमोगुण प्रधान होता है, सत्व और रजोगुण गौण होता है, तमोगुण भी गौण होता है, और शूद्र में तमोगुण की प्रधानता होती है। ऐसे ही सतयुग के अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है, त्रेतायुग के अंदर त्रेतायुग में रजोगुण की प्रधानता होती है, सत्वगुण की गौणता होती है, द्वापर युग के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण सत्वगुण गौण होते हैं, और कलयुग में तमोगुण की ही प्रधानता होती है, केवल तमोगुण। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। ऐसा ये कलयुग था। उस कलयुग के अंदर रहते रहते हमको कई वर्ष बीत गए, हम अयोध्या में रहे। अब एक बार बड़ी भयंकर वहां पर विपत्ति आ गई। उस विपत्ति के समय में फिर हमने अयोध्या छोड़ दी। तो अयोध्या छोड़ के क्या किया महाराज, कि जब अयोध्या छोड़ दी और हम दूसरी जगह गए, अब वो कथा का प्रसंग कल सुनाएंगे। तो गरुड़ जी महाराज कल आगे का प्रसंग सुनेंगे, काकभूषण जी सुनाएंगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय
सीताराम।
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम।